Welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Vibhuti Mishra.
धन्यवाद अर्जुन. नमस्कार श्रोताओं. मार्केट मंत्र के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरें आपके लिए लेकर आए हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रकाश चावला. प्रकाश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
नमस्कार.
और अब सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस मेरे सहयोगी अर्जुन चौधरी से.
सेंसेक्स एंड निफ्टी रजिस्टर मार्जिनल गेन्स. सेंसेक्स क्लोजेज 102 पॉइंट्स अप. निफ्टी इज अप बाय 0.29%. US स्टॉक्स क्लोज स्लाइटली लोअर ब्रेकिंग रीसेंट विनिंग स्ट्रीक. नैसडैक स्लिप्स बाय 0.3%. S&P 500 फॉल्स 0.2%. एंड द डाउ जोन्स इज डाउन बाय 0.15%. एंड ऑयल प्राइसेस आर ब्रॉडली स्टेडी आफ्टर अ रन ऑफ डिक्लाइंस. ब्रेंट क्रूड इज अप टू $77.46 पर बैरल.
सेंसेक्स और निफ्टी में मामूली बढ़त दर्ज. सेंसेक्स 102 अंकों की बढ़त के साथ बंद. निफ्टी में 0.2% की बढ़त दर्ज. हाल के बढ़त के सिलसिले को तोड़ते हुए अमेरिकी शेयर बाजार में थोड़ी गिरावट. नैस्डैक 0.3%, S&P 0.2% और डॉ जोन्स 0.45% फिसला. गिरावट के दौर के बाद विश्व बाजार में तेल की कीमतें मोटे तौर पर स्थिर. ब्रेंट क्रूड की कीमत $77.46 प्रति बैरल के ऊपर.
इन आवर टॉप स्टोरी
और शेयर बाजार का हाल जानते हैं हिंदी में. घरेलू शेयर सूचकांकों सेंसेक्स और निफ्टी में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई. बीएसई सेंसेक्स 102 अंक या 0.13% बढ़कर 80,905 पर बंद हुआ. एनएसई निफ्टी 71 अंक या 0.29% बढ़कर 24,770 पर बंद हुआ. बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.43% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.87% के ऊपर बढ़े हैं.
डोमेस्टिक स्टॉक इंडिसीज. सेंसेक्स निफ्टी रजिस्टर्ड मार्जिनल गेन्स एट क्लोजिंग बेल. द बीएसई सेंसेक्स क्लोज 102 पॉइंट्स 0.13% हायर एट 80,905. The NSE Nifty was up by 71 points, 0.29% to close at 24,770. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index rose by 0.43% and the small-cap index gained 0.87%. In the Sensex pack, 17 out of 30 companies registered gains. The top gainers today were Titan, which was up by 2.4%, Asian Paints was up by 1.6%, and Hindustan Unilever was up by 1.4%. Conversely, the major laggards were Ultra Cement, which was down by 1.5%, Tech Mahindra down by 1.4%, and Tata Steel, which fell 1.3%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 16 out of 20 sectors logged gains. The top gainers were consumer durables, which was up by 1.5%, FMCG was up by 1.3%, and healthcare was up by 0.9%. The top laggards were realty, which was down by 1.3%, Bankex and power, which were down by 0.17% each, and utilities was down marginally by 0.01%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive. Out of 4,038 companies, shares of 2,607 companies advanced, 1,345 companies declined, and 86 companies remained unchanged. Let's have a look at how the rupee performed.
विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 83 रुपये और 96 पैसे पर बंद हुआ. विश्व की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 0.06% की मामूली बढ़त के साथ 101.50 पर कारोबार कर रहा था.
Prakash ji, once again a warm welcome to you on the program. No surprises, the FIIs were again net sellers today to the tune of 800 crore rupees, but you know, you had backup in the form of DIIs. They were net buyers to the tune of 3097.45 crore rupees, which is why the market was up by 102 points on the Sensex. What is the market telling you right now, despite the DIIs being the net buyers? What does it mean in terms of net inflows into the market? Can the market sustain itself? It's cost 80,000.
Well, the market at this point of time is in a very interesting position. How is it so? They had a good run. Sensex is about 80,000, right? Nifty is about 24,000. Now, what has happened is there is a lot of interest in the market by retail investors, retail domestic investors, to the extent that money funds are moving away from banks, FD, fixed deposits, to the stock market through mutual funds, through systematic investment plans. So there's a lot of tremendous amount of interest in the stock market. What has happened is that now domestic retail investors has emerged as a very very powerful, influential category of investor. FII is there, very nice. If FIIs are not there, things don't matter too much. Things do matter, but they don't matter too much. So market had a good run, but now we have reached a stage where there is a little cautious approach being witnessed, because then the investor is smart enough also. Investor also knows that, okay, this much, will it run further? So there is a caution evident in the market. There is a good solid support. So every time market tends to fall, what is called dips are bought into. So it is a very smart strategy being adopted by a very optimist investor. In a way, bulls are having a good run.
Well, LIC, for instance, has bought into the market to the tune of 17,000 crore rupees already in the first half of this year. Are mutual funds equally eager in their buying interest in the market to support the market?
Well, as I told you, after all, what is mutual fund? Mutual fund is a combination of retail investors. They collect money from retail investors and they buy in different stocks. So mutual fund's purpose is to maximize the return on behalf of their unit holders. So mutual fund is very active, and they are active with, they are flush with funds, as I said earlier. So in fact, there is a cause of concern, because the deposit rates in the banks are not increasing to the extent of the credit growth is required.
Well, savings are 5% of GDP right now.
Well, I'm saving, after all, even in the stock market, if you see the in broader terms, savings can take the form of anything. It is only not it is not necessary that the savings should take the form only of the fixed deposits.
Prakash ji, मैं अर्जुन जी के पहले सवाल की ओर लौटता हूं। कल भी हमने यही देखा कि जो विदेशी निवेशक हैं वो बेच रहे हैं शेयर, तो आखिर उनके पास क्या कोई शंका है? हालांकि उनका जो शेयर बाजार है, जो भारत के बाहर का शेयर बाजार है, वो हम देख रहे हैं मोटे तौर पे निगेटिव ही हो रहा है, तो क्या उनमें कोई शंका है? ठीक है, सॉलिड सपोर्ट है, जो हमारे निवेशक हैं वो यहां पे खरीद रहे हैं। हम लगातार तीन दिनों का रिकॉर्ड देखें तो 470 के आसपास जो है वो शेयर बाजार जो है वो बढ़ा है, 80,000 के पार तो पहले ही पार। तो क्या लगता है आपको?
आप
साथ में एक सवाल और कि थोड़ा आगे का अनुमान भी हमारे जो जो लिए हैं उनको बता दें।
आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है
जी
भाई। ऐसी क्या चीज है जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को तो ऑप्टिमिज्म दे रहा है,
राइट,
और एफआईआईज में थोड़ी शंका पैदा कर रहा है? ऐसी क्या चीज है? ये आपका सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हमारे यहाँ ऑप्टिमिज्म एफआईआईज के पास भी है। अब आप पूछेंगे क्यों बेच रहे हैं? फिर वो बेच इसलिए रहे हैं कि हमारे यहाँ, एज मैंने पहले बोला, कि वैल्यूएशन का इश्यू है। वैल्यूएशन जो जिस दाम पे अभी भाव, जिस भाव पे हमारे शेयर्स बिक रहे हैं, कहीं ना कहीं एक 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 ऐसा असेसमेंट चल रहा है कि ये तो बाजार है ना, बाजार में जब चीज महंगी हो गई तो फिर इन्वेस्टर सोचता भाई महंगी तो नहीं हो गई
जी।
वैल्यूएशन कैसे होती है? वैल्यूएशन जो है, शेयर का जो भाव है, उसकी कंपनी की अर्निंग से मैच होना चाहिए, कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए। तो अर्निंग से वैल्यूएशन का जो जो अच्छा एक तालमेल है, वो विदेशियों को लेके थोड़ा है, हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर ऑप्टिमिस्ट है, तभी तो ऑप्टिमिस्ट है, लेकिन फिर आगे आगे रुक जाता है, तभी 80,000 है, फिर मार्केट नीचे आ जाती है। तो एक जिसको बोलते हैं रेंज में चल रही है मार्केट, इसलिए रेंज में चल रही है, या अंग्रेजी में उसको कंसोलिडेशन भी बोलते हैं, इसलिए चल रही है कि, और ये आपने पूछा आगे क्या होने वाला है, तो आगे अभी यही कंसोलिडेशन में मार्केट चलेगी। मार्केट
होता जानना चाहते हैं कि आगे क्या कुछ है,
मार्केट गिरेगी नहीं
जी,
बहुत ऊपर नीचे तो होगी मार्केट, हाँ। लेकिन गिरेगी नहीं मार्केट, कोई अनलेस कोई मेजर ग्लोबल इवेंट हो जाए, जिसको
जो फिलहाल दिख नहीं रहा,
जो किसी को कुछ मालूम नहीं
जी,
लेकिन अभी मार्केट गिरेगी नहीं, लेकिन रेंज बाउंड में मार्केट रहेगी, मार्केट स्टेबल है, ये है अभी अनुमान।
Prakash ji, you're talking about the price to earnings ratio when you spoke about valuation. FMCG, for instance, was up by 1.4% today. The Nifty FMCG was up by 851 points. So what are investors looking in terms of when they're buying into stocks? Are they looking at the earnings right now, or are they looking at something else in the market? Are they looking at it technically that there is going to be a movement and therefore they'll make gains, or they're looking at fundamentals like earnings? Because the price to earnings ratio seems to be a little skewed right now.
No, the price to earning ratio has stretched in several sectors. For instance, defense has a very good run. But now people are saying, oh, defense too much of run? Should I wait?
So mid cap and small cap has been quite stretched.
Yes. So all this stretching of the valuation is something that is coming in the way of further optimism. Okay, I would rather wait. That's a kind of a mindset. Good thing is that the retail domestic investors also is not being carried away by a sentiment kind of a thing. He also is smart enough. So that is why you see, as we discussed earlier, the market goes up and then before it goes further up, the domestic market investor, the participant also becomes cautious. So he wants to, okay, am I stretching it too much? So this kind of a dilemma of sorts is prevailing, which is good for the market.
So the opportunities have been there in the large cap because the price to earnings has been about 20. But the small cap and mid cap, at least experts have said that the opportunities are few. But if you look at today's trade, for instance, today's small cap and mid cap, there was a lot of buying interest in those sectors, especially by the DIIs. So how would you advise anyone who's seeking to enter the market right now just based on investor sentiment?
Well, anyway, as I always say that investor, there are two kind of investors. Long-term, steady investors and people who want to trade. They buy in and buy out. So I would always say, for a retail investor, good strategy is to go for fundamentals. Don't go for too much of a technical charts. You know, well, if technical chart does help when you want to enter, even if you want to enter for a long-term strategy, technical chart tells you when I'm buying a particular share, is it already too stretched? So if it's already too stretched, should I wait? But it's very difficult to time the market. So the advice would be that don't time the market. You don't know. You want to invest, pick up good quality shares. Don't go for mid cap, small cap, large cap, this cap, that cap. No. Go for quality shares, quality franchise, and franchise with good business potential. And there are some sectors which see cyclical, for instance, metals, for instance. They are subject to vulnerability of cyclical ups and downs. At times we should be careful about it. But there are said, for FMCG had been quite a docile kind of thing for several years anyway, because there was some issue with the rural demand. Now with good monsoon, there's a hope and there's an expectation that the rural, and there's some evidence also, some green shoots are seen even in the rural demand. That is why there's an interest amongst the FMCG.
I also want to ask you about fundamentally about the second quarter, the business cycle for the second quarter. Do you see earnings for companies pick up in terms of volumes and margin, and how do you see the export market for them?
Well, when it comes to earnings, corporate earnings, well, the corporate earnings are, it will be fair to say that the corporate earnings are fairly okay. They are not they are not we can't expect them to be a gung-ho kind of a situation, but they are fairly okay. There are some sectors which might see some challenge, and there are, for instance, trade related, export related, because of the markets of the export destination, there could be some issues. So the earnings, one has to, they could be okay. Fair value earnings you can expect.
अभी एक अच्छी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड 2024 में लगातार दूसरी बार ए प्लस रेटिंग मिलने पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारतीय रिजर्व बैंक में उनकी लीडरशिप और देश की आर्थिक वृद्धि दर और स्थिरता बनाए रखने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य को साबित करता है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? केवल दुनिया के दो तीन लोग हैं जिन्हें इस तरह का अभी ये मिला है, ए प्लस रेटिंग मिली है।
हमारे जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास जी, उन्होंने जब अपना कार्यभार संभाला तो सिचुएशन बड़ी चैलेंजिंग थी। कोविड के बाद उन्होंने संभाला कार्यभार, और उस टाइम सेंट्रल बैंक की भूमिका बड़ी अहम थी, क्योंकि बड़ी डिमांडिंग सिचुएशन थी और चैलेंज था, और विश्व में उथल पुथल हो रही थी, करेंसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं वो बहुत बड़ा अपने आप में काम होता है, और उन्होंने बखूबी निभाया है वो काम। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं बड़े कंफर्टेबल हैं, हमारे जो डॉलर के प्रति रूपी का जो एक्सचेंज रेट है स्टेबल है, हमारे जो बैंकिंग रेगुलेटरी जो काम है, बैंक्स जो है हमारे वो सेफ हैं, हमारे बैंक्स जो हैं वो सेफ हैं, हमारा रेगुलेटरी सुपरविजन बड़ा अच्छा है, कस्टमर सर्विस इम्प्रूव हुई है। और आज मैं उनको सुन रहा था किसी टेलीविजन इंटरव्यू में, और उनका काफी रुझान इस तरफ भी गया है कि जो साइबर सिक्योरिटी का इश्यू है, जो साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, साइबर उसके प्रति कैसी अवेयरनेस की जाए, तो बड़ा अच्छा उनका एक टेन्योर रहा है।
In more news, an RBI study has found that India's private corporate investment is estimated to surge by 54% to 2,45,212 crore rupees in 2024-25 from 1,59,221 crore rupees last year. The study also indicates that aggregate capital expenditure (CapEx) intended by the private corporate sector in 2023-24 increased significantly by about 57% over the preceding year. Investment intentions of private corporates remain buoyant during 2023-24 as reflected in the higher total number of projects as well as the total cost of projects sanctioned by banks and FIs, with greenfield projects accounting for the lion's share of about 89% in the total cost of projects financed. RBI's monthly State of the Economy Bulletin also states that in India, the aggregate demand conditions are gathering momentum with a revival in rural consumption on the back of growing incomes. The stimulus to demand is expected to reinvigorate the hitherto subdued participation of the private sector in total investment, which will spur growth. Prakashji, are we talking about FDI, a foreign direct investment, picking up in India? And just a word about the repo rate, which is at 6.5%, with CPI inflation for July 3.5, do you see the RBI governor at the next monetary policy meeting reduce the repo rate?
I don't see the possibility of immediate reduction in the interest rate, repo rate, because Governor Das has been very particular about it, that he would like to see stability. It's good news that the CPI has come down, but he, in my assessment, is not going to be influenced just by 1 month, right?
And on foreign direct investment?
About foreign direct investment, I think you have to see the investment in the private sector itself. Now we are seeing crowding in of the private sector investment. The investment was led by public sector investment for several years, for at least few years. Now the private sector has also joined in, which is a good news, which tells you that, okay, the domestic demand is showing promise.
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश भर के 10 करोड़ छोटे खुदरा विक्रेताओं की बेहतरी के लिए परस्पर सहयोग के प्रयासों पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में रोजगार और उपभोक्ता कल्याण पर ई कॉमर्स के प्रभाव से संबंधित एक कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने जोर देकर कहा कि खुदरा विक्रेताओं का अभी भी एक ऐसा बड़ा वर्ग है जिसे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्यवाही की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोग पूरी तरह से ई कॉमर्स पर निर्भर नहीं रहेंगे, इसलिए खुदरा विक्रेताओं की सहायता करना भी जरूरी है। बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे, ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग और खुदरा विक्रेता, परस्पर सहयोग की बात की है, बड़ा महत्वपूर्ण बात है ये।
नहीं, मंत्री ने तो आज काफी प्लेन स्पीकिंग टर्म्स में बोला है कि भाई आपका बैलेंस होना चाहिए, हम लोग ई कॉमर्स के हित में हैं, लेकिन ये नहीं कि उसके चक्कर में हमारे जो खुदरा व्यापारी हैं उनको नुकसान हो, हमें उनका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट उसके लिए कमिटेड है। ये उन्होंने बड़ा प्लेन स्पीक में ई कॉमर्स के जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो विश्व स्तर के प्लेयर हैं, उनको एक बड़े प्लेन स्पीक में बात की है और बड़ी वाजिब बात है।
स्मॉल स्टोर्स आर दे गोइंग टू फॉर्म इनटू कोऑपरेटिव्स, इज दैट वन ऑफ द वेज ऑफ बैटलिंग द ई कॉमर्स जायंट्स?
नो, कोऑपरेटिव्स वोंट वर्क। द ओनली थिंग इज द ई कॉमर्स मेजर प्लेयर्स एंड द स्मॉल रिटेलर्स और द ग्रोसरी स्टोर्स, they were not level playing. Here is the guy, the minister talked about predatory pricing. He raised the question, are we in a situation of predatory pricing? So when you have a predatory pricing, this is what the minister is emphasizing on, that let's not harm our neighborhood stores or our retail stores by, if there's a predatory prices at all, we must check against this. There should be space for growth for both, for e-commerce, technology-driven platform, as also the good old Kirana stores, who also are modernizing in a way. After all, you have a huge digital payment infrastructure, which is helping these traders.
वक्त है एशिया और यूरोप के बाजार का हाल जानने का। एशियाई शेयर बाजार में आज 5 में से 3 सूचकांक नुकसान में रहे। हांगकांग के हैंग सेंग सूचकांक में 0.69, चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक में 0.35 और जापान के निक्केई में 0.29% की गिरावट के साथ ही बंद हुए हैं, जबकि दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.17% और सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.10% की बढ़त दर्ज हुई है। यूरोप के शेयर बाजार में सभी 3 प्रमुख सूचकांक सकारात्मक क्षेत्र में कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक फ्रांस का कैक 0.34%, जर्मनी का डैक्स 0.32% और लंदन का फुटसी 0.21% के ऊपर कारोबार कर रहा था।
वेरी ब्रीफली, द निके इनफैक्ट वेंट डाउन बाय 0.29%, इट वॉज ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ ब्लैक फ्राइडे। वाई इज द येन बीइंग यूज्ड टू हेज?
Well, yen, Japan, what is called carry trade. So the carry trade hangover is still there. So that is why this issue around the carry trade of Japan or the yen carry trade, because traditionally for decades together there was no interest, almost nil interest rate in Japan. People were borrowing in Japan and investing somewhere else. So that was called carry trade. Now the reversal is seen, unwinding of the carry trade. That is why now and then you see this kind of a disruption.
Well, let's now move on to the US market. US stocks closed slightly lower, breaking their recent winning streak amid few market moving catalysts ahead of the Jackson Hole Economic Symposium set to get underway on Thursday. All 3 major US stock indices edged down, ending a multi-session rally in which the equities market bounced back from a steep sell-off driven by recession fears. Major US markets were trading in the red. The Nasdaq Composite slipped 0.33% and the S&P 500 fell 0.2% and the Dow Jones Industrial Average was down by 0.15%. There are fears of a recession, a technical recession in the US, are they true? And B, the US dollar index is now below 102. What is that telling us?
Well, about 2 weeks ago, there was a fear of US slipping into technical. But afterwards, in the last 2 weeks, there are some signs of what's called soft landing, if at all. So they, because you are moving in a situation where inflation is moderating in the US. Interest rate cut, the September cut is almost given. It's already priced in. And you talked about Jackson Hole Symposium. Fed Reserve Chair, what is his name? Jerome Powell, his speech is being awaited now, whether he takes a hawkish or a dovish stand, and possibility is that he might take dovish stand. So there is no fear as such that there could be a recession, but yes, soft landing possibility exists.
Well, the recent GDP for the month for July, I believe, is 2.5%. Is that accurate, and is that very good for the emerging markets?
GDP of the US?
Yes.
Well, as I said, the US economy is, there are concerns, especially when you are in the middle of election atmosphere, there are concerns. But concerns are not very alarming, so to speak. So, it's not going to be a disruptive kind of a situation. That's what the expectation now is. Well, it is changing every day. But it is the expectation at the moment is that at best or at worst, it could be soft landing.
And they also have the Inflation Reduction Act now.
Well, moderating, yes, definitely.
Let's move on to the oil market. Oil prices held broadly steady today after a run of declines driven by geopolitical concerns. The global oil benchmark Brent crude was up by 0.34% to $77.46 per barrel. The U.S. West Texas Intermediate WTI is trading down 0.44% to $74.04 per barrel when reports last came in. Are we seeing a spike in oil prices right now? Is that going to continue, or have oil prices, are they going to be range bound?
Well, oil prices are going to be range bound for the simple reason that the China, which is the largest consumer of oil, is slowing down. So demand in China is not going to support. So you see spikes now and then, and but then, you know, it comes down. And China is the main driver, which is slowing down. So, there is no fear that it will spike.
और खासकर ये अब पिछले कुछ महीनों में हमने देखा था कि 90 के आसपास जो है कीमत थी इसकी, अब 77 के आसपास है. तो काफी एक तरह से आप इसको किस रूप में देख रहे हैं और आगे जो है क्या सोचते हैं इसके बारे में?
डिमांड कम है.
जबकि जो टेंशंस हैं जो पॉलिटिकल, वो थोड़े हालांकि थोड़े कम हुए हैं अभी, कम दिख रहे हैं अभी. तो उस लिहाज से क्या
दो चीजें हैं ना प्राइस को इम्पैक्ट करती हैं. एक जियो पोलिटिकल टेंशन जो अब काफी लोगों थोड़ी सी आदत से पड़ गई है, ऐसा लग रहा है कि भाई ये एस्केलेट नहीं होती ज्यादा, लेकिन डिस्रप्शन तो होती है. आफ्टर ऑल जो ट्रेड है वो इम्पैक्ट तो होता है. लेकिन जो डिमांड है, जो इकोनॉमिक डिमांड, मैंने जैसे जिक्र किया कि चाइना जो मेन ड्राइवर है कंजम्पशन का, ऑयल का सबसे ज्यादा कंजम्पशन चाइना में है ऑयल का, वो स्लो डाउन कर रहा है. जब इकोनॉमी स्लो डाउन करती है तो फिर ऑयल का कंजम्पशन भी स्लो डाउन करता है. तो उस सूरत हाल में ये जो प्राइस कम हुआ है, और इसमें कोई अभी इमीडिएट पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो दोबारा बढ़े.
सोना का हाल जानते हैं. भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोना अंतिम समाचार मिलने तक 0.13% के ऊपर 72,010 रूपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी 999 फाइन भी 0.51% बढ़त के साथ 85,560 रूपये प्रति 1 किलोग्राम पर कारोबार कर रही है.
डू यू सी द कस्टम्स ड्यूटी रिडक्शन एक्चुअली इम्प्रूव retail sale of gold and silver in our market right now, especially with international prices of gold and silver going up?
Definitely. Definitely. It's going to improve the sentiment of the consumer. It's going to result into better margins for the jewelry industry. And because there was a substantial reduction in consumption, which is good, and it will help the employment, because a lot of employment is generated in the jewelry sector.
Prakash ji, market month mein aane ke liye aapka bahut bahut dhanyawad.
Hame badi prasanta hui.
And before we close, a reminder of the headlines. Sensex and Nifty register marginal gains. Sensex closes 102 points up. Nifty scales by 0.29%. US stocks close slightly lower, breaking recent winning streak. Nasdaq slips by 0.3%. S&P 500 falls 0.2%. And Dow Jones is down by 0.15%. And oil prices are broadly steady after the run of declines. Brent crude is up to $77.46 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
Namaskar.
Market Mantra.